अहाना, आप रो रही हैं? कमरे में कदम रखते ही अक्षय के कानों में अहाना की दबी सिसकियों की आवाज़ पड़ी। उसने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक देते हुए चिंतित स्वर में ये सवाल किया। बाथरूम में वॉश बेसन के पास खड़ी सिसकियां भरती अहाना के कानों में अक्षय की आवाज़ पड़ी। उसने झट से अपने गालों पर लुढ़काए आंसुओं को अपनी हथेलियों से पूछ लिया और दो चार बार चेहरे पर पानी डालते हुए मुँह धोया। शीशे में देखकर हुलिया दुरुस्त किया और फीकी मुस्कान लबों पर सजाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गई। जैसा कि उसे अनुमान था, दरवाज़ा खोलते ही उसे अक्षय सामने नजर आया। अक्षय ने गहरी निगाहों से उसे देखा। अहाना उसके सामने निगाहें झुकाए खड़ी थी, चेहरे पर गहरी उदासी झलक रही थी। सुबह वो ताज़े गुलाब सी खिली थी और अभी एकदम से मुरझा सी गई थी। अहाना, आप ठीक हैं? जी, हम बिल्कुल ठीक हैं, अहाना ने अक्षय के सवाल पर बिना किसी भाव के सपाट लहजे में जवाब दिया। क्या कर रही थी आप अंदर बंद होकर? अक्षय ने गंभीर स्वर में सवाल किया। अहाना की ओर से एक बार फिर वही जवाब आया, कुछ नहीं। अहाना, आप रो रही थी? पल भर ठहरने के बाद अक्षय ने संजीदगी से सवाल किया। अहाना की हैरत भरी निगाहें पल भर को उसकी ओर उठीं। अगले ही पल उसने हड़बड़ी में इनकार में सर हिला दिया। नहीं तो, अहाना, आपके लबों से निकले शब्द आपकी आंखों से मेल नहीं खा रहे, उनमें मौजूद लालिमा आपके झूठ की चुगली कर रही है, अक्षय ने गहरी निगाहों से उसे देखते हुए गंभीरता से कहा। उसकी बात सुनकर अहाना उससे नजरें चुराने लगी। ये देखकर अक्षय ने अगला सवाल किया, मम्मी की बातों का बुरा लगा आपको? नहीं, अहाना ने निगाहें झुकाते हुए एतराज़ जताया। अक्षय पल भर उसके सपाट चेहरे को देखता रहा, फिर उसके गाल को अपनी हथेली से छूते हुए परेशान लहजे में सवाल किया, अहाना, आप मुझसे नाराज़ हैं? हम क्यों आपसे नाराज़ होंगे? सवाल के बदले उल्टा सवाल आया और अहाना अपनी उन लालिमा समेटे बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा बड़ा किए उसे देखने लगी। मम्मी ने बाहर आपको आपके परिवार को इतना भला बुरा कहा और मैंने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, शायद इसलिए, अक्षय ने अपने मन का भय और उलझन उसके सामने व्यक्त कर दी थी, जिसे सुनकर अहाना ने सपाट लहजे में जवाब दिया, वो माँ है आपकी, जन्म से आपका उनसे नाता जुड़ा है और हम कुछ वक्त पहले आपकी ज़िंदगी में आए हैं। हमारे लिए अगर आप उनसे बहस करते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता और ना ही हमें अच्छा लगता कि हम एक माँ और बेटे के बीच झगड़े और दूरियों का कारण बने। हमें नहीं पता कि वो क्यों हमसे ऐसे व्यवहार कर रही हैं और हमने ऐसा क्या गलत किया है जिसके कारण वो हमसे नाराज़ हैं, पर अगर आप हमारे लिए उनके खिलाफ जाकर उनसे कुछ कहते तो हमारे लिए उनकी नाराज़गी और बढ़ जाती। दुनिया में कोई भी माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जिस बेटे को उन्होंने जन्म दिया, अपनी सारी ज़िंदगी और खुशियाँ जिस पर वार दी, वो दो दिन पहले आई अपनी बीवी के लिए उनके खिलाफ चला जाए। इसलिए आपकी चुप्पी का हमें बुरा नहीं लगा और ना ही उनकी बातों से हमें दुख पहुंचा। शादी ब्याह में ऐसा होता ही रहता है, कोई बात नहीं। अहाना, आप भले ही इनकार कर रही हैं पर मैं जानती हूं कि मम्मी की बातों से आपको दुख पहुंचा है, आप हर्ट हुई हैं। उनकी ओर से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूं। मम्मी ने जो भी कहा उसे दिल पर मत लीजिए, भूल जाइए उन्हें। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको और आपके परिवार को इतना सुनना पड़ा। प्लीज़ उनकी बातों का बुरा मत मानिए, अपने मन में उनके लिए कोई गलत भावना मत आने दीजिए। मम्मी ऐसी नहीं है, स्वभाव सख्त है उनका, पर वो बुरी नहीं है, बस अभी गुस्से में है और असल में ये गुस्सा और नाराज़गी आपके लिए नहीं, मेरे लिए है। अहाना जो खामोशी से अक्षय की बात सुन रही थी, उसकी आखिरी बात सुनकर चौंक गई। क्या मतलब? मतलब कि मेरी ज़िद थी कि दहेज के बिना शादी करूँगा, वरना शादी ही नहीं करूँगा। माँ मेरी बात से खुश नहीं थी, पर मेरी ज़िद के आगे उन्हें झुकना पड़ा, इसलिए अभी थोड़ा नाराज़ हैं। मैं उनका अपना बेटा हूँ तो मुझ पर तो गुस्सा निकाल नहीं सकती, इसलिए आप पर निकाल रही हैं। मुझे कुछ कह नहीं सकती, इसलिए आपके परिवार में कमियां ढूंढ रही हैं, पर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएंगी, तब तक थोड़ा धैर्य रखिएगा, उनसे बहस मत करिएगा, कुछ कहें तो चुपचाप सुन लीजिएगा, वक्त बीतेगा तो माँ ये सब बातें भूल जाएंगी, अक्षय ने संक्षेप में उसे पूरी स्थिति से अवगत करवा दिया। अहाना अब भी हैरान थी। अक्षय जैसे ही चुप हुआ, अहाना ने बेइख्तियारी से उसे देखते हुए हैरानी से सवाल किया, आपने ये हमारे लिए किया? उसकी हैरानी की वजह समझते हुए अक्षय ने तुरंत ही एतराज़ जताया, नहीं, अपने लिए किया, मैं दहेज के फेवर में वैसे भी नहीं था और आपने कहा कि दहेज देकर शादी नहीं करेंगी, पर मुझे आप पसंद आ गई थी, इसलिए अपनी पसंद को अपनी पत्नी और इस घर की बहू बनाकर इस घर और अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए माँ को नाराज़ करना पड़ा। ये भी एक वजह थी कि मैंने आखिरी फैसला माँ पर छोड़ दिया था, ताकि उनके मन में ये न रहे कि मैंने आपके वजह से ऐसा किया और वो बेवजह आपसे नाराज़गी पाल करना बैठ जाएं। मुझे लगा था कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मेरे लिए आपका चुनाव किया है तो आपको किसी मुश्किल वक्त का सामना नहीं करना पड़ेगा और माँ ने आपको दिल से अपना लिया होगा, पर आई गेस मैं गलत था, वो बात अब भी उनके मन में है, शायद इसलिए आपके साथ उनका व्यवहार इतना कठोर है, पर वो धीरे धीरे अपना लेंगी आपको, आप बस सब्र से काम लीजिएगा, उनकी बातों को दिल पर लेने के बजाय नज़रअंदाज कर दीजिएगा
और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आप मेरी पसंद हैं। मुझे नाज है अपनी पसंद पर। मुझे आपसे और आपके परिवार से रिश्ता जोड़ने पर कोई अफसोस नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है और क्या करता है। मेरे लिए आप उतनी ही अहमियत रखती हैं जितनी मेरी माँ। मैं आपके परिवार की उतनी ही इज्जत करता हूँ जितनी अपनी फैमिली की करता हूँ, और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, चाहे स्थिति कितनी ही खराब क्यों ना हो, चाहे सारी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो। पर मैं अपने दिए वचन निभाऊंगा और अपनी आखिरी सांस तक आपका साथ दूंगा। रूपाली जी की बातों और तानों ने उसके नाजुक मन को घायल कर दिया था, और अक्षय की बातों, इन एहसासों ने उन जख्मों पर प्यार से मरहम लगा दिया था। अक्षय की आंखों में अपने और अपने परिवार के लिए सम्मान देखकर वो भावुक हो गई थी। सही कहते हैं लोग, अगर आपका हमसफर आपका साथ दे तो चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो, आप संभल जाते हैं। लाइफ पार्टनर का साथ, विश्वास और प्यार उस संजीवनी बूटी जैसा होता है जो बड़े से बड़े जहर को काटने की क्षमता रखता है, आपको जीने की, अपने गमों को भुलाकर मुस्कुराने की वजह देता है। अक्षय की बातें सुनकर आहाना भावुक हो गई थी। उसने भीगी पलकें उठाकर अक्षय को देखा और रुंधे स्वर में बोली, अगर आप हमारे साथ हैं तो हम सब कुछ सह लेंगे। अगर मम्मी जी हमसे इस वजह से नाराज हैं तो हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे उनके मन से नाराजगी मिटाकर उनके दिल में जगह बनाने की, ताकि भविष्य में कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जहां आपको मम्मी जी और हम में से किसी एक को चुनना पड़े। हम ख्याल रखेंगे कि उन्हें शिकायत का मौका ना दें और उनकी बातों पर दुखी होकर आपको परेशान ना करें। बहुत समझदार हैं आप, और मुझे पूरा यकीन है कि जब माँ आपको समझने और जानने लगेंगी तो फलक जैसे ही आपको प्यार करेंगी। आप उनके दिल में अपने लिए जगह बनाने में कामयाब जरूर होंगी। अक्षय ने प्यार से उसके गालों को सहलाया, फिर अंगूठे से अपनी पलकों की नमी चुराते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। इन अप्रत्याशित नजदीकियों से आहाना का दिल धड़क से रह गया। उसकी सांसें पल भर को थम गईं और पूरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। अभी वो इन एहसासों में उलझी हुई ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ ही अन्वय की आवाज भी आई, भाई सुमित जी जो आए हैं। ठीक, मैं आ रहा हूँ। अक्षय ने यूं ही आहाना को अपने सीने से लगाए हुए ही जवाब दिया, जबकि आहाना एकदम से घबरा गई और उसकी बाहों के घेरे से आजाद होने को मचल उठी।
कुछ पल बाद अक्षय ने उसे खुद से दूर किया। बेचारी आहाना संकोच से अपना सर तक न उठा सकी। अक्षय उसकी चांद से चेहरे पर बिखरी हया की गुलाबी रंगत देखकर मुस्कराया, फिर अपनी मुस्कान को छुपाते हुए संजीदगी से बोला, आहाना अब रोइएगा नहीं और दोबारा कभी मुझसे अपने आंसू, अपना दुख, अपना दर्द छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा। हम पति पत्नी हैं और हमें सारी जिंदगी एक साथ बितानी है। अगर हम एक दूसरे से अपनी भावनाओं को छुपाते रहेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे की खुशी में शामिल नहीं होंगे, दुख में साथ नहीं देंगे, मुश्किल वक्त में सहारा नहीं देंगे, तो इस रिश्ते को निभाते हुए सारी उम्र एक दूसरे का साथ कभी नहीं निभा सकेंगे। समझ रही हैं ना आप मेरी बात? जी, हम ध्यान रखेंगे। आहाना के फड़फड़ाते लबों से बमुश्किल ये शब्द निकले। पलके लड़खड़ा कर रह गईं। अक्षय ने आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने सर्द रूखे लबों को टिका दिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए वहां से चला गया। आहाना छुईमुई के पौधे जैसे खुद में ही सिमट गई। अक्षय के जिस्म से आती खुशबू अब भी उसके वजूद को महका रही थी, अपने इर्द गिर्द अब भी उसके बाहों के घेरे को महसूस कर रही थी, और माथे पर उसके एहसासों की गर्माहट अब भी मौजूद थी। धड़कने अब भी बेचैन थी और सांसें शोर कर रही थी। अक्षय की करीबी हर बार उसे खुद में सिमटने पर मजबूर कर देती थी। कुछ पल बाद आहाना इन एहसासों के मायाजाल से बाहर निकली और खुद को संभालते हुए कमरे से बाहर निकल गई। सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी नज़र ड्राइंग हॉल में सुमित के साथ बैठे अक्षय पर पड़ी, जो किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। आहाना की निगाहें उसकी उस दिलकश मुस्कान पर पल भर को ठहर गई थीं। सीने में मौजूद दिल कुछ अलग अंदाज में धड़का था, और कुछ पल पहले जो हुआ याद करते हुए मीठी सी हया मिश्रित मुस्कान उसके लबों पर आ ठहरी थी। कुछ देर पहले की बहस को भुलाकर सब साथ बैठे थे। आहाना जैसे ही वहां पहुंची, सुमित उठकर खड़ा हो गया और आदर सहित सर झुकाकर उसे नमस्ते किया, जिस पर आहाना ने भी हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, बहू जाकर दामाद जी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। रूपाली जी ने एक बार फिर हुक्म झाड़ा था, पर आवाज में वो पहले वाली कठोरता या कड़वाहट नहीं थी। आहाना ने हामी भरी और रसोई की ओर बढ़ गई। आखिर वो नीचे आई ही इस काम से थी। सबने साथ बैठकर चाय नाश्ता किया। उसके बाद चारों आदमी बाहर लॉन में जाकर बैठ गए। रूपाली जी और उनकी बहन भी उनके साथ बैठी बातें करने लगी, जबकि पहले फलक ने आहाना के साथ मिलकर सारे सूठे कपड़ों को तह करवाकर उनकी जगहों पर रखवाया। फिर रात का खाना बनाने में आहाना की मदद करने रसोई में चली आई थी। आपस में नाराजगी भुलाकर सब साथ बैठे हंस बोल रहे थे, जिससे आहाना को सुकून था। रात के डिनर के बाद फलक सुमित के साथ अपने ससुराल चली गई थी। अन्वय अपने दोस्त से मिलने निकल गया था। बाकी सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे और आहाना रसोई का काम समेट रही थी।